इसी के साथ दूसरी गफलत, जो इल्म की कुछ बातें तो सुनी सुनाई बाहर बहुत है, चलिए किसी हद तक लोग कहते हैं जी हमें आता है दीन, ठीक है, जो उससे बड़ी गफलत है वो आज इस कुरान से गफलत है। आप देखिए कि अल्लाह की ये किताब सादी सी सिंपल किताब है, आप इसको पढ़ना शुरू कर दें दिल नहीं करेगा छोड़ने को, सुनना शुरू कर दें छोड़ने को दिल नहीं करता। अल्लाह ने ये दी थी कि इसको ले लो और इसके मुताबिक ज़िंदगियां गुजारो। अब आप एक मशीन लेकर आए, मिसाल है ग्राइंडिंग मशीन लेकर आए, अब उसके साथ एक छोटा सा बुकलेट आता है, आज अगर पाकिस्तान में बनती है तो उर्दू में भी होगा, इंग्लिश में होगा, क्या लिखा होता है कि इस मशीन को इस्तेमाल करने से पहले इसको पढ़ लो, उसमें लिखा होता है। अब कोई किताब ना खोले और आते के मशीन गंदी होगी, इसको ज़रा धो ना लूँ, रखे उसको सिंक में और ऊपर पानी डाल दें, और जब धो धा के साफ की स्विच में लगाया एकदम धमाका हुआ तो फट गई। अब वो पकड़े और उसको ले जाए नेशनल कंपनी के पास कि कैसी मशीन बनाई है भी तुमने, ये तो घर जाती जल गई। वो कहेगा क्यों क्या किया, कहेगा जाती धोई है। वो फौरन उस बुक में से खोल कर दिखाएगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसको पानी से बचाएं। वो कहेगा तुमने ये पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने पढ़ा ही नहीं तो मेरा क्या कसूर। वो कहेगा ये हमारा कसूर तो नहीं। याद रखिए क्यामत के दिन हसरत की हद होगी लोगों की उस वक़्त जब सिर्फ अपनी जहालत की वजह से वहाँ उनको सजाएं मिल रही होंगी और वहाँ वो परेशानियों का शिकार होंगे। कोई बंदा ऐसी जहालत से अगर अपने आप को पाए तो उससे निकालने की ज़रूरत है। यकीन करें ये कुरान अनपढ़ लोगों को भी समझ आता है, आपके सामने कहीं से भी कुरान पढ़ा जाए समझ आता है। ये आप अपने लिए क्राइटेरियन रखिए, कुरान के वो हकूक जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बताए वो, और आज के हम मुसलमानों का तर्ज़ अमल देखें। आज नॉन मुस्लिम कहते हैं सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और सबसे कम समझी जाने वाली किताब कुरान है। आपका बच्चा मैथ ऐसे नहीं पढ़ता, साइंस ऐसे नहीं पढ़ता, केमिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ता, ट्यूशन पे ट्यूशन आप उसको पढ़वाते हैं ताकि वो कुछ समझे, 2 + 2 = 4, लेकिन इस कुरान को हम बगैर समझे पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कुरान का माहिर क़यामत के दिन बुज़ुर्ग फरिश्तों के साथ होगा। क़यामत के दिन जो हाफिज़े कुरान है उसके दर्जे उसके हिफ्ज़ के मुताबिक होंगे। इक़रा वरक़ा, पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा, और तेरा आखिरी मुकाम वो होगा जिस आयत पे तू होगा। और आपने फरमाया कि कुरान क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों के हक़ में शिफात करेगा, कुरान का कारी अपने घर वालों की शिफात करने का अहल होगा। आप देखिए ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आज हम अपने आप को देखें, सीधी सी बात है, 5 हक हैं। मैंने शायद 100 दफ़ा ये पहले जिक्र किए होंगे, आपके साथ दोहरा लेती हूँ। पहला हक है किस पर ईमान लाए, ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तकीन। ईमान किस चीज़ पे लाना है, यही किताब कामयाबी का ज़ीना है, इसी किताब से इज्जत मिलती है। इन्नल्लाह यरफ़ु बिहाज़ल किताब अक़वामम व यदउ बिही आखरीन, के अल्लाह इसी किताब से कौमों को इज्जत देता है, इसी से ज़िल्लत है। आज हमारी ज़िल्लत की वजह ये नहीं है कि माल नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आज सब कुछ मौजूद है, लेकिन असल बात है कि हम इस किताब से दूर हैं। अभी सुबह आपसे आने से पहले एक और जगह दर्स था तो वहाँ पढ़ रहे हैं शुक्रगुजारी पे बुक, तो उसमें हमने अभी पढ़ा है कि सऊदी अरब दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था, और आपको पता कि किस वक्त अल्लाह ने इसकी हालत बदली है, जहाँ उस दौर के जो हुक्मरान ने कुरान की शरीयत को नाफिज करने का ऐलान किया। ये सब सोना और तेल और जो हीरा मोती निकल रहे हैं ये शरीयत के नफाज के बाद निकले, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अगर बस्तियों वाले ईमान लाएं तकवा रखें तो हम इनको ऐसा दें कि नीचे से भी रिस्क आएगा और ऊपर से भी आएगा। आपके इस मुल्क में बहुत कुछ है, अभी अल्लाह ने छुपाया हुआ है क्योंकि अभी हम सीधे हो जाए। तो आज आपको मुझे अपनी और अपनी नस्लों के कुरान की फिक्र करनी है। आप कहेंगे ईमान बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यकीन कीजिए जो बच्चे वेस्ट के अंडर पलते हैं, जो उसके माहौल में, मैं नहीं कहती कि बाहर पलते हैं, यहाँ भी ऐसे होंगे और वहाँ भी बहुत बड़े अलग से डरने वाले होंगे, जो बच्चे वेस्टर्न कल्चर के दबाव में पढ़ रहे हैं, अब उनके दिलों से कुरान के अंदर वो ईमान यकीन ख़त्म किया जा रहा है। वो कहते हैं, बच्चा माँ को कहते हैं, मैं अपने दोस्त को क्यों कहूँ कि तुम कुरान पढ़ो, मैं उसके कहने पे बाइबल क्यों ना पढ़ लूँ, मैं उसको क्यों कहूँ कि मुसलमान बन जाओ, वो मुझे कहे तो मैं उसके कहने पे क्रिश्चियन क्यों ना बन जाऊँ। तो इस चीज़ की रिवाइवल की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि इसको ठीक पढ़ना। आज आप सब अपने आप से एक सवाल करें, क्या मैं कुरान को ठीक पढ़ती हूँ? देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप मिशारी राशिद की तरह पढ़ने लग जाएं, आप इदरीस अबकर की तरह पढ़ें, आप अबू बकर शात्री की तरह पढ़ें, अल्लाह करे कि हम उनसे भी अच्छा पढ़ें, लेकिन सीधा सादा कुरान, मखारिज हरूफ और जो मदूद हैं किसको खींचना किसको कम है। आपके शहर में बीसियों लोग होंगे, आप चाहें तो हम आपके लिए असाइन कर देते हैं ऐसा कोई टीचर, सिर्फ आप कहीं कहीं से कुरान सुना लें। हमें भड़ भड़ के चढ़ चढ़ के बातें करना और दुनिया के मसले छेड़ना इसका हक है अगर हमें कुरान नहीं आता। कह लीजिए ये ज़ुबान अल्लाह ने दी इसलिए थी कि इस पे कुरान जारी हो। आज आप देखिए अगर कुरान ठीक नहीं, आज से नियत करें। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 महीने रह गए अल्लाह के हुक्म से, रमज़ान बिल्कुल हमारे करीब है। कितना कुरान पढ़ते हैं लोग रमज़ान में, कई लोग 5-5 सिपारे भी पढ़ते हैं, तो क्या गलत पढ़ूंगी? आज से नियत करें और इंशाल्लाह एंड पे बात करते हैं। अगर आप लोग चाहें हम इस घर में भी आपके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने को तैयार हैं। आपके लिए अल्लाह ने शहर में एक मदरसा बनवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बुनियादें पड़ गई हैं, काम शुरू हो गया। एक दिन आएगा कि वो अपनी पूरी खैर लोगों को देगा इंशाल्लाह। आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं, उधर आइए इधर आइए। अभी इंशाल्लाह हम फरवरी के फर्स्ट वीक से नया कुरान का कोर्स शुरू कर रहे हैं। चलिए पढ़ा हुआ एक बार फिर पढ़ लीजिए, इस खुशफहमी से तो निकलिए ना कि हमें सब आता है। और सब बात है तो जाके आप पढ़ाइए, हमें तो हर तरह के लोगों की ज़रूरत है। और ये वक्त हमेशा नहीं रहना, ये वही वक्त है जब मस्जिद नबी की बुनियादें खुद रही थी। आज की मस्जिद नबी को देखकर कोई मान ही नहीं सकता। तो याद रखिए जब दीन को हमारी ज़रूरत होती है और हम ठंडे होके बैठ जाते हैं तो ये बड़ी बुरी बात है। तीसरा हक क्या है कुरान का, किसको समझें? आप मुझे सादा कुरान दीजिए, मैं आपके साथ एक्टिविटी कर सकती हूँ, जहाँ से खोल दीजिए भला हमें उर्दू में आता कि नहीं आता। अभी तिलावत प्ले करती हूँ आपके लिए, आप सुनिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कितना समझ आ रहा है। किसी बंदे का सबसे मेरी नज़र में बड़ा मेयार आलिम होने का, दीनदार होने का, इल्म वाला होने का यह है कि जब कुरान सुनता है या पढ़ता है तो उसको समझ आए। तर्जमे वाला कुरान तो बेसाखी है, हर वक्त क्या हम तर्जमे के साथ सुनते हैं? क्या इस वक्त आप मेरी ये बातें तर्जमे से सुन रहे हैं और मैं इस वक्त नोश्क में कुछ बताने लग जाऊं, या फ्रेंच में बोल दूं, या चले और कुछ नहीं तो मैं इंग्लिश में ही बोल दूं, कितने लोग हैं जो यहाँ बैठे रहेंगे? बात समझ ना आए तो हम तो अपने जैसे इंसान की बात नहीं सुनते। कुरान समझ नहीं आता, दिल ही नहीं लगता। तो इसके लिए यकीन करें सिर्फ अगर आप रोज़ आते हैं ना, हफ्ते में 6 दिन 5 दिन 1 साल, आप हफ्ते में 4 दिन 1.5 साल, हफ्ते में 3 दिन 3 साल, 2-2.5-3 साल, और सारा सारा दिन नहीं। क्या अल्लाह ने जो इतनी नेमतें दी हैं मुझे आपको, मेरे हाल हम गिनना चाहें भी तो नहीं गिन सकते, क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि हम अल्लाह की इस किताब को जो उसने हमारी हिदायत के लिए भेजी थी उसको पढ़ें? और आज याद रखिए ये जो दीन टुकड़ों में बटा है ना, फ़लाँ बरेलवी है, फ़लाँ अहलेदीस है, फ़लाँ शिया है, फ़लाँ सुन्नी है, फ़लाँ फ़लाँ जो भी नाम है, सभी के नाम उनको अच्छे लगते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह क्या है कि हम सब कुरान पर इत्तफाक तो करते हैं, पढ़ते सब कुरान है, लेकिन हम खुद नहीं समझते। आज नियत करें, आप कहेंगे आपको इस घर में कुरान शुरू से शुरू कराते हैं, मेरा दिल है कि हम कोई प्रैक्टिकल चीज़ समझें। अगर आज से शुरू करके रमज़ान तक अगर हम अपनी नमाज ठीक कर लें, हमारी तजवीद बेहतर हो, हमें कुरान की और सुन्नत की दुआएं याद हो जाएं, हमें कुरान की बेसिक चीज़ें समझ आ जाएं, इंशाल्लाह रमज़ान में जब हम पूरा कुरान दौरे कुरान के तौर पर पढ़ें और सुने, यकीन करें आपको ऐसे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी अब शुरू हुई है। हर दिन हमारे पास ऐसी बीसियों मिसालें इधर उधर से पहुंचती हैं कि लोग रोते हैं कि हमारी ज़िंदगी इस किताब ने बदली। किसी इंसान के हाथ में क्या है मुझे बताइए, कोई किसी को क्या देता है? ये किताब आपको मुझे बदलती है। और अगर आपने अभी तक ये किताब तर्जुमे से नहीं पढ़ी, क़यामत के दिन ये कुरान हमसे हिसाब मांगता है। फिर उसके बाद चौथी बात आती है कि अब इस पर अमल। देखिए सीधी सी बात है, अमल कब आता है? जब बात समझ आती है। आप किसी को कहते रुक जाओ तो कब रुकेगा? जब उसको रुक जाओ का मतलब समझ आता है, बैठ जाओ, खा लो, पी लो, जब समझ आता है तो फिर हम सभी समझते हैं। और यकीन करें कि आज लोग राह के साथ कुरान पढ़ते हैं। और किसी ने मुझे क्लिप भेजा कि देखिए ज़रा हालात, कोई कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे, गाँव था कोई और रात का कोई जलसा था, तो वो कॉम्पिटिशन था कोई किरत का, तो जो कारी थे कुरान पढ़ रहे थे तो वो लय में पढ़ रहे थे और लोग वाह वाह सुबहान अल्लाह बेलें दे रहे। और आपको तो आयतें कौन सी थी? जहन्नुम की आयतें थी। मैंने जब वो पढ़ा तो मेरा वो जिसको कहना चाहिए कि दिल फटने के लिए तैयार था कि ये किस पे झूम झाम रहे हैं। और जैसे वो लोग शायरों को नहीं कहते मुकर्रर मुकर्रर एक बार फिर पढ़े, वो फिर कहते वो फिर पीछे से शुरू करते थे, फिर और महफिल झूमती और रात का समा था और मेरे हाल पूरा गाँव जमा था। इस जहालत का क्या हल है? आप देखिए चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि सूरत मायदा की वो आयत नहीं आती कि बस सारे को बस सारे का तो फक दो ईदी या हुमा, कि चोर मर्द और औरत है उसका हाथ काट दो। अब अगर आप ये इल्म आम कर दें तो आपके मुल्की चोरियां ख़त्म हो जाएंगी। कौन अपना नुकसान कर सकता है? हम सऊदी अरब में थे तो वहाँ होटल वालों से पूछा कि हम अपना सामान कीमती होटल में छोड़ दें, को होगा तो नहीं नुकसान? तो उस आदमी ने कहा बिला फिक्र छोड़ दें। क्यों? कहते जब यहाँ किसी को वर्क वीज़ा मिलता है, कोई बाहर से लड़के मोस्टली आए होते हैं, तो उनको हम ये सारी बातें पढ़ाते हैं कि देखो अगर खबर भी मिल गई ना कि तुमने किसी के कमरे से कोई चीज़ चोरी की, सीधा तुम्हें गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे, हाथ कटेगा। कहते हैं इतना डर जाते हैं कि कुछ भी नहीं करते, उधर पता ना कि कटेगा, इधर पता है कि कटना कोई नहीं, आज तो हाथ ही बड़े लंबे हैं। तो सारी बात यह है कि हम सब इस कुरान को समझें, और जब समझ जाएंगे फिर जिंदगियां बदलेंगी। सच बताइए कि आज हमारी जिंदगियों में लगता है कि हम कुरान समझे हुए हैं? इस वक्त तो लग रहा है, मस्जिद में भी लगता है, जुमे की नमाज में भी लगता है, लेकिन शादियों में क्या हो जाता है, हमारे बाजारों के क्या हालात हैं, हमारे कारोबार करने की डीलिंग लेने देने और हमारे बाहर के हंगामे और सड़कों का कचरा, क्या प्रैक्टिकली अगर आज कोई किसी को बताए बगैर हमारे मुसलमानों का ज़रा सा जायज़ा दे तो मानेगा ये मुसलमान है? हमारा कुरान कोई सिर्फ बंद कमरे में पढ़ने वाला नहीं है, ये चलती ज़िंदगी का है। और जब ये चार हक पूरे कर लें तो आखिरी हक जो आपका मेरा इस कुरान का है वो कह के फिर इसको दूसरों से शेयर करें, अपने साथ इस चीज़ को, खैर को ले जाएं, फिर इसकी तबलीग होती है, फिर इसको दूसरों से शेयर करते हैं। क्या चीज़ है जो इस वक्त आपके साथ ये बातें करने पे माइल कर रही है? वो यही है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी आग से बचना है और दूसरों को भी बचाना है। और एक दफ़ा ये काम कर लिया, आपके दुनिया के गम दूर होंगे। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लोग कहते हैं हम बीमार थे, तोड़ा हुआ था बीमारियों ने, ये कुरान उस दौर में ज़िंदगी में आ गया, अब बीमारी बीमारी नहीं लगती। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, घर टूटे पड़े हैं, तलाक की नौबतें आई हुई हैं, इल्ज़ाम लगे हैं, अल्लाह ने ऐसे में कुरान पकड़ा दिया। वो कहते हैं जो मर्ज़ी होता रहे, मैं तो खुश हूँ कि मैं फारिग हूँ। ये कुरान आपको आपकी मौजूदा ज़िंदगी से मुतमईन कर देता है, ठीक है। फिर तीसरी गफलत जिसका आज इंसानियत शिकार है, वो ज़िक्र इलाही से गफलत है। आपने अपनी नानियों दादियों या सासों को बड़ों को देखा होगा कि अक्सर उनके हाथ में तस्बीह होती थी, तस्बीह नहीं भी होती थी तो वो बातें कम करते और जिक्र ज़्यादा करते थे। और आप देखिए कि जिक्र ज़ुबान से होता है लेकिन असल में इसकी जो रूट है ना वो दिल में होती है। आप किसी को भाई मिलते हैं, आप कहते हैं आपका जिक्र हो रहा था, दिल में आप याद कर रहे होते हैं तो आप उसको याद कहते हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ताला की तरफ जब तवज्जो होती है उससे दिल खुश रहता है। दिल की बस्ती की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र। जैसे मछली को पानी में चैन मिलता है ना तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। फिर आप देखिए मुसीबतें आती हैं, जलजले तूफान जो भी है, आफात को रोकने का जरिया जिक्र इलाही है। फिर इसी तरह आप देखिए ज़िंदगी में सख्तियाँ आती हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, जिक्र से टलती हैं और जिक्र करने वाला जन्नत के बागों में से है। जिक्र करने से ही तो बंदे को 24 घंटे की अबूदियत का होता है, लेकिन आज क्या हुआ? वो तो जिक्र के फजाइल आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, आज क्या हुआ? दुख के साथ कह रही हूँ, किसी को अपने हालात पे क्यास करना है तो कर ले, किसी दूसरे का ना सोचे। आज हमारा ये फ़ोन हमारे जिक्र के रास्ते की रुकावट है, घंटों फ़ोन पे बातें। हम जितना लोगों से बोलते हैं और क्या जी पैकेज लिया हुआ है, अब उसको फ़ोन कर, 1 घंटा फ़ोन करके आप अपनी बेटी से क्या बातें पूछते हैं, और आप 1 घंटा अपनी दोस्त से बात करते हैं तो उसमें अमूमन क्या बातें होती हैं, जिन बातों के बाद में नतीजा क्या निकलना है। हालांकि आपको होता है कि सुबह के असकार आप पढ़ते हैं, आप 10 लोगों को पूछिए, राह चलते मासियों में से 10 को, ख़ानदान में से, यंग बच्चों में, डिफरेंट एज ग्रुप के 10-10 लोगों को जमा करें और उनसे सवाल करें। सुबह की दुआएं पढ़ते हैं, शाम की दुआएं पढ़ते हैं, मस्जिद में जाने की, सुबह उठते ही आपको तो बिस्तर से उठने की दुआ है। नबी सल्लम अभी अपने बिस्तर पे बैठते थे तो पहले इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ध पढ़ते, वहाँ से उठे फारग होने के लिए बाथरूम में गए तो बाथरूम में जाने की दुआ है, वहाँ से निकले तो गुफरानका है, आप वज़ू करने लगे तो पहले बिस्मिल्लाह है, वज़ू किया तो वज़ू के बाद की दुआएं हैं, मस्जिद में जाने लगे तो घर से निकलने की दुआ, फजर और की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के बीच की दुआ, मस्जिद में दाखिल हुए वहाँ की दुआ, मस्जिद में अंदर गए सुन्नत पढ़ी निकले बाहर आने की दुआ। अब देखिए 700 से ज़ायद दुआएं आपको सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डे टू डे ज़िंदगी से मिलती हैं। आज कितनों को ये जिक्र आता है? फिर आप देखिए सिर्फ यही जिक्र नहीं है, अल्लाह के नबी ने तो हमें इतने इंतहाई पर्सनल वक्तों के भी जिक्र सिखा दिए। आपने फरमाया कि जब कोई शौहर अपनी बीवी के पास आए तो दुआ करे, और वो जिक्र ही होता है कि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निब शैतान मा रज़क्तना, कि अल्लाह हमें भी शैतान से बचा और हमारी इस मुलाकात के नतीजे में अगर कोई बच्चा होगा तो उसको भी शैतान से बचा। मैं अक्सर ये सवाल शादीशुदा सिस्टर से करती हूँ, आपसे भी करूँगी, मुझे जवाब ना दें, खुद से पूछ, कितने जोड़ों को ये दुआ आती है और कितने इसका अहतमाम करते हैं? तो फिर क्यों कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए? फिर क्यों हम नस्लों का रोना रोते हैं, ये बच्चे इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर बच्चे को शैतान का चौका लगाता है। बीबी मरियम को अल्लाह ने इससे बचा लिया या हज़रत ईसा को बचा लिया, क्यों? क्योंकि वो माँ की दुआ थी। ये जिक्र अज़कार एक हिस्न है, एक हमारे लिए कह लीजिए कि एक किला है। शैतान हमारे दिल के इर्द गिर्द रहता है। जैसे आप देखिए, कहते हैं कि चोर एकदम नहीं आता, पहले रास्ते देखता है, पहले इधर उधर से आते जाते मामूलात देख रहा होता है। कुरान में कहता है फी सुदूर इन्नास, शैतान क्या है, हमारे सीने के इर्द गिर्द रहता है। यानी ये क्या सीना, हार्ट जिसको कल्ब कहते हैं, कल्ब नहीं, सदर है वो जगह जिसके अंदर दिल है, जो हमारी चेस्ट है, शैतान इधर ही बस फिरता है। फरमाया जब बंदा जिक्र करता है तो शैतान बाहर भाग जाता है, और जब गाफिल होता है तो वो उसके अंदर आ जाता है, और फिर जब चोर अंदर आ जाए वो अपनी मर्जी से चीज़ें उठाए हटाए। आज हमारा क्यों इतना आउट ऑफ कंट्रोल कल्चर हो रहा है, क्यों बच्चे नहीं सुनते, बड़े नहीं सुनते, मियाँ बीवी के दिल में खटके हैं? यानी मैं तो ऐसे देखती हूँ कि जो अल्लाह का नहीं रहता वो बंदों का भी नहीं रहता। उसकी वजह क्या है कि जिक्र नहीं। और आप देखिए, किसी ने मुझे पूछा पहले भी कि हम कैसे नफिल पढ़ें, कितने पढ़ें, तो मैंने कहा अल्लाह के नबी ने इतने नफिल बता दिए हैं कि अगर आप सिर्फ सुन्नतों के मुताबिक चलें तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप खुद देखिए, सुबह फजर के बाद आप अगर सुबह पहले नमाज के बाद के अज़कार पढ़ते हैं, फिर आप सुबह की दुआएं पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा कुरान पढ़ते हैं, क्योंकि इन्ना कुरान अल-फज्री काना मशहूदा, अब आप वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप देखिए कि 100 से ज़्यादा अल्लाह के नबी ने कोई जिक्र गिन के किया ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त कोई इतनी तस्वीरियाँ नहीं होती थी, कोई लोगों को इतनी गिनती नहीं आती, सीधे साधे लोग थे और उंगलियों की पोरों पर सिखा दिया कि ये कर लो। अब आप देखिए कि जब ये सारे काम आप करते हैं, कम अज़ कम घंटा डेढ़ आपका इसमें लग जाता है, फिर आप अगर अपने घर के कामों में मशगूल हैं, ज़ुबान पे जिक्र है, कुछ तस्बीहात ऐसी हैं 100 दफ़ा पढ़ लेते हैं, कोई भी काम, छोटे छोटे लफ्ज़ हैं लेकिन उसका अजर बहुत सारा है। फिर आप देखिए घर में गए दुआ पढ़ी, घर से निकले दुआ पढ़ी, सवारी पे बैठे दुआ की, आप शीशा देख रहे हैं दुआ कर रहे हैं, आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं इस्तखारा कर रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, गधे की आवाज़ आ गई तो दुआ, मुर्ख की आवाज़ सुनी तो दुआ। आप मुझे बताइए आपको अल्लाह याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गफलत तो दिल में आती नहीं है। और आप देखेंगे कि आप जितना जिक्र के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, और ख़ास तौर पे एक गफलत जिक्र की क्या है कि जो हिफाजत का ज़रिया है। आपको अगर चाहिए तो मैं भी आपको दे सकती हूँ बाद में, बुक्स मौजूद हैं, फ़ोन पे ऐप्स मौजूद हैं, हिफाजत की कुछ 40 से 50 दुआएँ जो नबी सल्लम से हमें मिलती है डेली बेसिस पे पढ़ने वाली। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्री मा खलक, फरमाए 3 दफ़ा पढ़ लो, किसी भी मखलूक के शर से तुम बच जाओगे। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैयुन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवा समीउल अलीम। कितना को टाइम लगा? 3 दफ़ा पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता। क्या हमने अपने बच्चों को ये अज़कार सिखा दिए? क्या हमारे बच्चे इन सब अज़कार का विर्द करते हैं? फिर हमें खौफ क्यों ना आए और कैसे ना आए? आज आप देखिए बाहर जाएं तो खतरे। बच्चे को मैंने कहा फजर के लिए जाया करो मस्जिद, कहता नहीं हालात बड़े ख़राब है, सुबह नहीं जा सकते। मैंने कहा ईशा के लिए जाया करो, नहीं अकेला नहीं जा सकता। यानी मुसलमान बच्चा ये कहता है कि मैं फजर या ईशा पे मस्जिद में गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इससे भी ज़्यादा कोई हमारी हलाकत का ज़रिया बन सकता है? अगर आप ये जिक्र अस्कार करते हैं तो आप देखेंगे कि इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आप 10 लोगों को पूछिए मेरा हाल है, देख के तो पढ़ते होंगे तो 2 या 3 पढ़ते होंगे, और ज़ुबानी तो शायद किसी एक को सारे याद हो। जब इंश्योरेंस की बात होती है, दूसरों की प्रोटेक्शन की बात है, तो पैसे दे दे के हम उनकी प्रोटेक्शन में जाते हैं। कोई इमाम जामिन पहनकर अपने आप को हिफाजत में लेता है, और जो मुफ्त की बातें सीधी सीधी बातें बताई हैं वो नहीं है। एक शख्स था तो उसने अपना एक वाक्या किसी किताब में लिखा कि कहीं दूर जा रहा था, अपने शहर से दूर था, तो उस दिन याद आया कि मैंने दुआएँ नहीं पढ़ी, तो उधर ही बैठ के उसने अपने यानी जाते राह में दुआएँ पढ़ ली। जब वापस गया तो अपने सर पे रखा हुआ पटका जब उतारा तो उसके अंदर काले रंग का एक सांप था। कहते 70 किलोमीटर तक वो सांप मेरी पगड़ी में रहा, जंगल से गुजरा होगा या कहीं भी था, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं डसा? क्योंकि मैंने आऊज़ु बिकलिमात पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो लिहाजा देखिए अपना फ़ायदा। आज कोई कहता है सीट बेल्ट बांध लें, आपका अपना फ़ायदा। जहाज़ अगर इधर उधर गिरेगा तो शायद आप बच जाए, है ना। जब दुनिया की चीज़ों पे हमें प्रोटेक्शन लेनी है तो फिर आखिरत की क्यों नहीं लेनी? फिर पांचवी चीज़ जिससे आज बहुत गफलत है, और ये बड़ी बारीक सी चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा, और वो क्या? नियत से गफलत। वो कैसे नियत से गफलत होती है? बड़ी मारूफ हदीस है हज़रत उमर की, इन्ना मला अमालु बिन्नियात। सिर्फ हज़रत उमर से ये हदीस साबित होती है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। हर बंदे को वही मिलेगा जो उसने किया। एक शख्स था, उसने घर बनाया तो उसमें छोटा सा रोशनदान रखा। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये क्यों रखा है? तो कहा कि इसमें से हवा आएगी। तो आपने कहा, अगर तू ये नियत कर लेता ना कि इसमें से अजान की आवाज़ आएगी, तो हवा तो आनी थी। बात समझिएगा, चीज़ एक ही है, नियत के फ़र्क से बात फ़र्क होती है। आज दिन रात एक बाप, एक माँ, एक बच्चा, हर एक को देखिए, हम अपने वाजिबात अदा करते हैं। बाप कमाता है ना, माँ घर साफ करती है ना, खाना भी पकाती है, लेकिन हमारी चूंकि नियत अजर की नहीं होती तो बस एक जायज़ काम है। गफलत किस चीज़ से? मसलन आप देखिए, अब खाना पका रही हैं, क्यों पका रही हैं? सारे पकाते हैं नहीं, आते मुताम भूखे को खाना खिलाना है। ए अल्लाह, मैं नियत करती हूँ कि इस खाने को जो भी भूखा खाएगा, जिसमें शौहर है, बच्चे हैं, घर के कुछ लोग हैं, तो अल्लाह मुझे उस पर अजर दे। चूँकि हम नियत नहीं करते तो बस जायज़ है, नियत करेंगे तो अजर है। हम दावतें पकाते हैं खानदान की, क्यों भाई? शादी हुई है तो सब पका रहे हैं, तो अब हमें भी इस जोड़े की दावत पकानी है। अच्छा, केले क्या पकाएं उसके साथ, फिर सारे घर वालों को और 50 लोगों की हम दावत पकाते हैं, और मेरा ख्याल आज के दौर में 20,000 से ज्यादा खर्च करते हैं। क्यों पकाई? शादी की दावत है जी, रस्म है, फिर दुल्हन को जोड़ा दे देंगे। मिसाल दे रही हूँ जो मैं समझे। अगर आप इसको कहें खाना पका रही हूँ, क्यों? अल्लाह के नबी ने और कुरान में भी आता है कि भूखों को खिलाओ, नियत सच रखें। और यकीन करें, आप ऐसी दावत पकाएं ना आपको थकन होगी और ना आप अपनी कहना चाहिए वुस्सत से ज़्यादा मेहनत करेंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए आपने पकानी है, आप अच्छी भी पकाएंगे और उसमें लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा दूसरों की निस्बत। कौन सी औरत है जो घर साफ नहीं करती या नहीं करवाती? हम सब करते हैं। नियत कर लिया करें क्या तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है। जब निसफ ईमान है तो अल्लाह ताला, मैं सफाई इसलिए कर रही हूँ या करा रही हूँ कि मेरा ईमान निस कम अज़ कम पूरा हो जाए, आपके लिए अजर है। फिर आप देखिए कि घर की सामान लाता है मर्द, सारे ही लाते हैं, और मर्द लाए या औरत लाए, पैसे तो मर्द खर्च करता है। अब एक है, करना ही है जी, अब बच्चों पे तो खर्च करना है, आप क्या कीजिए? अगर आप लाते हैं, आप कहें कि नहीं अल्लाह, ये सदका है, आपने खुद कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि जो अपनी बीवी के मुंह में भी लुकमा डालता है वो भी सदका है, तो मैं इसलिए घर में खर्च लाता हूँ, या किसी को भी दे। आप किसी के घर जाते हैं, आप कुछ भी ले जाएं, मिसाल है दूध का डब्बा ले जाएं, नियत करें ये सदका है, अल्लाह मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इस दूध की चाय पियेंगे तो उसके बाद जो भी कोई नेकी करेंगे मुझे हिस्सा मिलेगा। हम लेन देन कितना करते हैं, लाखों हजारों का लेन देन शादियों ब्याहों में हमारा चलता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये दिया था तो अब हमने भी देना, ना दिया तो ये होगा और सलामियों के पैसे। लेकिन अगर आप किसी को दे रहे हैं इस नीयत से दे रहे हैं कि मुझे अजर मिले, मैं इसकी नेकी में शामिल हो जाऊं, मैं किसी को खाना खिलाऊं, इस खाने से ताकत मिलेगी, नेकी मिलेगी, तो आप देखें कि वो आम काम जो वाजिब था, गुना नहीं है, लेकिन उसका अजर आपको ज़रूर मिलेगा। और हदीस में आता है, अबू मसूद से एक रिवायत है कि जो मुसलमान अपनी बीवी बच्चों पे सवाब समझ कर खर्च करता है, वो सारा माल उसके हक़ में सदका हो जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि खेल खेलना, आप रात को सोते हैं, कौन नहीं सोता? नियत करें, अल्लाह इसलिए सो रही हूँ कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ और मैं फजर के लिए उठूँ, ये भी सदका है। और जल्दी इसलिए सो रही हूँ कि जल्दी, हत्ता कि आप देखिए शौहर बीवी का ताल्लुक, अल्लाह के नबी ने कहा कि इसमें भी सवाब है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ये कैसे? ये तो हम अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। कहा, अगर ये ख्वाहिश तुम गलत जगह से पूरी करो तो गुनाह नहीं होगा? तो तुम अपनी बीवी के पास इस नियत से जाओ कि अल्लाह मेरे जज्बात को ठंडा कर दे और मेरा इबादत में दिल लग जाए। तो आपकी हदीस है कि हर एक के लिए सदका होता है, और ये सदका क्या है कि इंसान अपनी शहवत सिर्फ अपनी बीवी से पूरी करे, दूसरी जगह से ना करे। तो आप देखेंगे हमारी जब नियतें सही होंगी ना, यकीन करें गिले शिकवे भी ख़त्म हो जाएंगे। हमने तो इतना पूछा, वो तो पूछा नहीं, हम गए तो वो नहीं। ये जितनी रिश्तेदारियों में हमारी एक दूसरे से गिले गुजारियाँ होती हैं, ये हमारी नियतों की खराबी की वजह से होती हैं। और आप देखेंगे कि ये सब कुछ नियतों के साथ अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़ा होगा। एक सहाबी थे अबू बुरैदा, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हज़रत मास और अबू मूसा अलअशरी उनको यमन की तरफ भेजा। जब जाने लगे तो मास ने पूछा कि अब्दुल्ला तुम कुरान किस तरह पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं खड़े होकर, बैठकर और ठहर ठहर के पढ़ता हूँ। तो माज़ कहते हैं कि मैं तो सो जाता हूँ और फिर उठता हूँ और कहता हूँ कि मैं इसलिए सोया था ताकि मैं सुबह की नमाज़ के लिए उठ सकूँ। बात समझ गया, एक कुरान पढ़ के सवाब ले रहा है, दूसरा उसी रात में सो जाता है कि मैं फजर न ज़ाया कर दूँ। तो असल बात यही है कि जब हमारी नज़र इन चीज़ों में लग जाती है तो फिर हमारा काम भी अच्छा होता है। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी नियत कर लें। आप देखिए कि किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, हम दोस्तों की, साथ वालों की, हमसायों की, मासियां हैं आपकी, पैसे तो आपने उनको देने ही होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी नियत अच्छी कर लें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इस मौजू को आप जितना मर्जी भी कर लें, हत्ता कि आप देखिए किसी को स्माइल देना, ये भी नियत कर लें कि मुस्कुराहट क्या है, सदका है, हल्की बात कर दें, किसी का दिल खुश कर दें। हदीस में था कि किसी मुसलमान भाई के दिल में खुशी को दाखिल कर देना सबसे बड़ी नेकी है। तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा हम अगर अपनी नियतों में अमल करेंगे तो बेहतर होगा। फिर एक छठी गफलत है जो बहुत आम है, और वो क्या है, हम आमाल की तरतीब से गाफिल हैं। मसलन बहुत अहम और फ़र्ज चीज़ों को छोड़ देते हैं और गैर ज़रूरी या कम ज़रूरी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। बस आप देखिए कि लोग नमाज़ नहीं पढ़ते कई दफ़ा, और उम्रे पे जाने का बहुत शौक है। आज नबी की सुन्नतें नहीं पूरी कर रहे और रोज़े की जालियों को चूमने का बड़ा शौक़ है, यानी कम अजर वाली चीज़ों पे लगे होते हैं। मस्जिद हमारे घर के पास है, आवाज़ आ रही है, जमात से नहीं जा रहे पढ़ने। भाई घर में आपने पढ़ ली एक, मस्जिद में गए 27। आज कोई चेन आपको एक एडवर्टाइजमेंट दे के बाय वन एंड गेट 26 फ्री, कोई छोड़ेगा उनको? दिन रात हमारे मर्द 26 नमाजों को फौत कर रहे हैं, पता ही नहीं है हमारा अजर कितना है। जमा तफरीके कर कर के, हिसाब कर कर के रात को आते हैं, थके हारे हैं, खाना खाने की हिम्मत नहीं, नमाज तो चले बात की बात है, उधर तो प्लस माइनस इतना, और फिगर आउट करते हैं आज क्या कमाया और आज डॉलर कितना था, आज कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इम्पोर्ट हुआ। लेकिन अल्लाह के हाँ रोज़ हमारी नेकियाँ कम हो रही हैं। आप घर में पढ़ेंगे एक नमाज, वहाँ पढ़ेंगे आपकी 27 नमाजें हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुरान का एक लफ्ज़ 10 नेकियाँ, दूसरा लफ्ज़ 10 नेकियाँ, अलिफ लाम मीम, तीन लफ्ज़ पढ़िए 30 नेकियाँ ले आए। पढ़ी हैं तो पढ़ी रहे, क्यामत के दिन क्या है, एक नेकी के लिए बंदा परेशान होगा। यौम यफिर्रुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अभी, जिस दिन आदमी अपनी बीवी से, भाई से, बेटे से, घर वालों से भाग रहा होगा कि कहीं कोई मुझसे नेकी ना ले ले, छोटी छोटी चीज़ों पे। फिर आप देखिए रोज़ा, पीर और जुमेरात का रोज़ा, 13, 14, 15 का रोज़ा, कोई डाइटिंग जितनी मर्जी कर लें रोज़े के पकेंगे नहीं, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब हमें नेकियों का अजर पता लग जाता है तो फिर हमें उस चीज़ को करने में सहूलत हो जाती है, तो हमेशा नेकी करते हुए देखें। फिर आप देखिए, आप कहते हैं कि जो शख्स लोगों को नफ़े वाला इल्म दे वो नफिल पढ़ने से ज़्यादा अजर है। यानी किसी बुजुर्ग ने कहा कि मैं नफिल पढ़ूंगा तो मेरा फ़ायदा है, तो अगर उस वक्त में मैं लोगों को इल्म दे दूंगा तो लोगों का फ़ायदा है, तो मैं लोगों को फ़ायदा देना अपने अमल पर भारी समझता हूँ। आज आप देखिए कि बहुत कम लोग हैं जो इल्म के लिए भाग दौड़ करते हैं। वजह क्या है कि शैतान को ये पता है कि इसका ये अमल दूसरों से खूबसूरत हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आज से आप एक काम करें, फ़राइज़ नहीं है ना तो सुन्नतें नहीं कबूल, और अगर सुन्नतें नहीं है तो नफिल नहीं कबूल। मैंने देखा है कुछ ख़वातीन हैं वो तस्बीह नमाज ज़्यादा शौक से पढ़ती हैं फ़र्ज़ नमाज की नस्बत। ईद के दिन सुबह ईद की नमाज के लिए लोग कितनी तैयारी करते हैं, घर के छोटे छोटे बच्चों को भी उठा के भेज देंगे, और उसी दिन हो सकता है फजर भी ना पड़ी हो क्योंकि चांद रात मनाते रहे। बेवकूफ़ी की बातें हैं, यानी फ़र्ज़ को छोड़कर सुन्नतों और नफलों के ऊपर चल पड़ना। और आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा हम गौर व फिक्र करेंगे ना तो हमें यह समझ आएगा कि हमने अपने आप को गफलतों में रखा है। अब ये मैंने तो चंद चीज़ें बताई हैं ना, आप ख़ुद से पूछिए। कई लोग अपनी ज़कात से गाफिल हैं, दी नहीं, क्या करें जी, कितनी दें हमें तो पता ही नहीं है। तो भाई जब अल्लाह ने बेहिसाब दिया है तो फिर आप भी उसको बेहिसाब दीजिए। कितने रोज़े छुट्टे में, इससे गफलत है। आपको पता है कि फ़र्ज़ रोज़े नहीं माफ़ होते, नमाजें माफ़ हो जाती हैं, और आज हम नमाज़ दोबारा पढ़ने को तैयार हैं और हर नमाज के साथ दूसरी नमाज या जो भी मुख्तलिफ तरीक़े हैं, लेकिन फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते। रोज़ा छुटा हुआ है, आपको रखने की ज़रूरत है, आपने रखना है, उससे गफलत है। फिर एक और गफलत क्या है जी, कि हम लोगों के मामलों में बड़े गाफिल हैं। सच बताइए, हकूकुल इबाद के मामले में कितने लोग केयरफुल हैं, भाइयों का हक़ देने में बहनें, बहनों का हक़ देने में भाई, विरासत की बांट में, बीवियां जिनको अल्लाह के नाम पे हलाल करके घर लाए थे उनके साथ बदतमीज़ी और बद अखलाकी या उसको गाली देना। क्या आप और मैं आज इस सारी चीज़ों को जमा करें तो एक ओवरऑल गफलत की हालत नहीं दिखती? मासियों के साथ बात करते में कितनी गफलत है। मैं तो कहती हूँ सच, मैं पाकिस्तान आती हूँ, मेरा सबसे बड़ा गम और हम ये बन जाता है कि लड़कियाँ लड़के इतने छोटे छोटे घरों में रखे हुए हैं, गरीब बेचारे जिस वक्त में किताब भी ना थाम सकें वो आपकी जूतियाँ पकड़ के पॉलिश कर रहे होते हैं और उठते बैठते आपकी डांट खाते हैं। ना रखें, आप खुद कर लें, ना करें, बट ये जन्नत में आपसे पहले चला जाएगा और आप इसी की वजह से रुके होंगे। मासियों को तूतकार करना, लड़कियों को बदतमीज़ी से बोलना, ड्राइवर को ड्राइवर कहना, ये गफलत है। आज अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया, कल उसको दे सकता है। तो हर एक अपनी गफलत खुद चेक करें। किसी के मामलात में बहुत लोग ज़ुबान के इस्तेमाल में गफलत का शिकार हैं, सच बोले, अगर ये रिकॉर्डर, मेरे पास तो रिकॉर्डर चलता है, मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं कहती हूँ चलो किसी को फ़ायदा ही होगा ना बाद में। आम हालात में कोई महफिल चल रही हो, पार्टी है, शादी है, दावत है, या वैसे ही घर में कोई दावत है, आप खामोशी से एक रिकॉर्डर प्ले कर दें, घंटे दो के बाद जाकर देखें फिर हमारी क्या क्या बातें रिकॉर्ड होती हैं। इतना बोलते हैं, बेतुक्का बोलते हैं, पता नहीं हम कैसा बोलते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं कि नहीं करते, लेकिन हम बोल रहे हैं। गफलत है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीद। सूरत काफ में अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी ज़ुबान से जो एक लफ्ज़ भी निकलता है ना, उसको भी लिखने वाला लिख लेता है, एक एक कदम लिखा जाता है। फिर आप देखिए गफलत किस चीज़ से, पहले घर में क्या है, अब किस चीज़ की ज़रूरत है, इससे गफलत है। बस गए, पसंद आया ले आए, ये अच्छा लगा ले लिया, ये रंग अच्छा लगा ले लिया, ये पर्दे ले लिया, ये घर की सामान ले लिया, बर्तन ले लिए, और कपड़े जूतों की तो अब कोई हद ही नहीं रह गई। वो ये नहीं सोचते कि गर्मियों में अब चार जोड़े तो चाहिए ताकि धोएं तो दूसरा पहने, अब सिर्फ डिज़ाइन चाहिए, टेस्ट चाहिए। ये गफलत नहीं है। अलमारियाँ बंद नहीं होती हमारी, यकीन कीजिए, घर हमारा अस्तबल बना पड़ा है, हमें अब वो छोटा लगने लग गया जो एक वक्त में बड़ा था। कि आप बड़े हो गए? नहीं, चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं। और गफलत का हाल क्या है, ले आएंगे पता ही नहीं किधर है। कई सिस्टर्स हैं वो कहती हैं सेले लगती हैं, ढेरों ढेर लाते हैं, जल्दी से ला के छुपाते हैं, और कईयों से छुपाना भी होता है तो वो फिर याद ही नहीं रहता, फिर कभी कुछ सफाई हुई तो निकालते हैं तो कितने पोटले निकलते हैं। क्या आपको मुझे अल्लाह ने इस दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजा? सिकंदर आजम ने भी कहा था कि जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना, खाली हाथ। आखिरी बात करके फिर इंशाल्लाह इस पर रोकती हूँ। क्या आपने फरमाया कि बंदे के माल में से सिर्फ तीन चीज़ें उसकी हैं, खा लिया, अच्छी चीज़ खाई, मज़ा आया, ताकत मिली, लेकिन चंद घंटों के बाद जिस्म से निकल गया गंदगी की सूरत में, और पहन लिया, अच्छा पहना, साफ़ सुथरा पहना, इस्तेमाल कर लिया, इबादत की, अल्लाह का हक अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह चीथड़े बन गए और ख़त्म हो गया। और तीसरी चीज़ जो अपने हाथ से आगे दे दिया, ये तीसरी चीज़ आगे जाके काम आ जाएगी। इसके अलावा फरमाया सब वारिसों का है, सब वो रसा का है। और यकूलुल अब्दू माली माली, बंदा सारी ज़िंदगी कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, लेकिन उसके माल में सिर्फ ये तीन हिस्से हैं। उतनी मेहनत कीजिए, और अगर अल्लाह ने आपको माल दिया तो अपनी ज़िंदगी में उसको ठिकाने लगा लें, खुदा के लिए उसको झगड़ों के लिए ना छोड़ें, भाई बहनों के दिलों की नफ़रतों का ज़रिया ना बनाएं। भाई बहनें दो दफ़ा रोते हैं, एक जिस दिन बाप जाता है और एक जिस दिन बंटवारा पड़ता है, और ये 10-10, 20-20 साल बाद भी ये दिलों में रंज से नहीं जाती कि भाई ये ले गया तो बहन ये मांग रही है तो मैंने उसको नहीं देना और उसको नहीं देना। मैं कहती हूँ जिस बंदे को विरसे में से कभी माल मिल गया, और विरसा अमूमन माँ बाप का ही मिलता है, उसके बाद अगर वो माल से मोहब्बत करे उससे ज़्यादा ना समझ कोई नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी गफलत के पर्दे चाक करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन।